पृष्ठ संख्या 42। चीन में अफीम की तस्करी 1820 के दशक में व्यापक वृद्धि हुई। शीघ्र ही अफीम सेवन के दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। यह समस्या मनुष्य के द्वारा अपने विनाश का कार्य था। इससे देश के अन्य क्षेत्रों में भी निर्बलता आने लगी। इस बहते हुए विष की चपेट में सभी पुरुष, चाहे वे किसी भी वर्ग के हो, आ गए। ये सभी 40 वर्ष की आयु से कम थे। 1835 ईस्वी के लगभग वरिष्ठ अफसर तथा फौजी जनरल ऐसा अनुमान लगाने लगे कि उनके अंतर्गत कार्यरत 90% व्यक्ति अफीम के व्यसन से ग्रसित थे। गुणवान प्रतिभावान युवा इस व्यसन के शिकार हो गए। इनमें से कई परीक्षा कक्षों में जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि उन्हें समय पर अफीम प्राप्त नहीं हो सकती थी। सरकारी कार्यकलापों में कार्य सक्षमता का अभाव तथा जनहित कार्यों में गतिहीनता इस व्यसन के कारण थी। कानूनों के ठीक प्रकार लागू न होने के कारण चारों ओर कुप्रबंध तथा सामान्य अव्यवस्था प्राप्त थी तथा सामान्य अव्यवस्था व्याप्त थी। व्यवसाय मंद पड़ गया तथा जीवन निर्वाह में भी गिरावट आई। लिंत्ज, वह वरिष्ठ अफसर जिसने अफीम संकट में अग्रणी भूमिका निभाई थी, कि गणना अनुसार 1839 ईस्वी में चीनियों के द्वारा प्रतिवर्ष 10 करोड़ तायल अफीम के धूम्रपान पर व्यय किए जाते थे, जबकि सरकार की संपूर्ण वार्षिक कर आय लगभग 4 करोड़ तायल ही थी। यदि इस प्रकार की स्थिति को चलने दिया जाए और अफीम का व्यापार समृद्ध होता रहे, तो लिंज के अनुसार कुछ दर्जन वर्षों में शत्रु से भिड़ने के लिए कोई सैनिक नहीं रहेंगे, और न ही धन होगा कि फौज को शस्त्रों से सुसज्जित किया जा सके। 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी के बीच ही चीन से 45 लाख डॉलर 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी के बीच ही चीन से 45 लाख चांदी के डॉलर निर्यात किए गए। चांदी तथा तांबे के सिक्कों की परिवर्तन दर भी असंतुलित हो गई। एक तायल के बदले में 1700 से 2000 तांबे के सिक्के देने पड़ते थे, और कहीं तो इससे भी अधिक। इस प्रकार की स्थिति से दक्षिणी चीन सबसे अधिक प्रभावित हुआ। सैनिक वर्ग, निम्न अफसरशाही तथा मजदूर, जिनके वेतन का कुछ हिस्सा तांबे के सिक्कों में होता था, बुरी तरह से प्रभावित हुए। वाणिज्य कुंठित हो गया तथा राजकर भी कम हो गए। संपूर्ण देश पतन के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। इन परिस्थितियों में सम्राट ताओ कुआंग का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। सम्राट ने अफीम की तस्करी को रोकने के लिए अध्यादेश जारी किए। देश के चुने हुए बुद्धिजीवियों का यह विचार था कि अफीम के व्यापार का कानूनीकरण किया जाना चाहिए। अफीम तस्करी को रोकने से ब्रिटेन के साथ युद्ध हो सकता था, जो देश के लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरी ओर कुछ उच्च अफसरों का यह कथन था कि अफीम के संकट से निपटने के लिए इसके व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तथा उसे सख्ती से लागू करना ही उचित होगा। 1838 से 1839 ईस्वी में महान अफीम बहस हुई, जिसमें सम्राट ने सभी महाराज्यपालों और उच्च स्तरीय अधिकारियों की सलाह मांगी। अंत में यही निर्णय लिया गया कि अफीम व्यापार पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाए। 1839 ईस्वी में लिंत्जू को राजकीय कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा उन्हें विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई, ताकि वह अफीम के अभिशाप से चीन को मुक्त करवा सके। अफीम व्यापार के अग्रणी नेता तथा अंग्रेज अभिकर्ता जार्डिन इस बात से काफी चकित हुए कि अपने कर्तव्य के प्रति लीन की कटिबद्धता अटूट थी। अफीम व्यापार की सबसे बड़ी कंपनी के स्वामी डेंट को कारावास दे दिया गया। कैंटन व्यापार के अधीक्षक इलियट के द्वारा लीन को अफीम हेतु घूस देने के सब प्रयत्न असफल रहे। लीन के प्रयत्नों से लगभग 31,68,339 पाउंड अफीम अंग्रेज व्यापारियों से जब्त कर ली गई। अफीम के विरुद्ध युद्ध का पहला दौर अंग्रेजों के विरुद्ध चीनियों ने जीत लिया था। 1839 ईस्वी से 1840 ईस्वी का संकट अंग्रेज व्यापारियों की संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कारण ही नहीं हुआ था। अफीम के व्यापार की समाप्ति का यह अर्थ था कि ब्रिटिश भारत चीन व्यापार, त्रिकोणीय व्यापार अवरुद्ध हो जाता, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय उपनिवेश के शोषण के लिए आवश्यक था। इस त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली का प्रारंभ भारत से होता था। इसके द्वारा ब्रिटेन को वह सब अतिरिक्त राशि प्राप्त होती थी जो कि उनके द्वारा भारत का खर्च चलाने से अधिक होती थी। 1830 ईस्वी में चीन के व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय लगभग 1 करोड़ पाउंड प्रतिवर्ष थी। यह राशि भारत से प्राप्त कर की आधी थी। ब्रिटिश कभी भी ऐसे क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते थे जिसका मूल्य भारत से आधा हो। पृष्ठ संख्या 44। इस कारण अफीम का व्यापार अंग्रेजों के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस कारण युद्ध के अतिरिक्त अंग्रेजों के समक्ष अब कोई मार्ग नहीं शेष रह गया था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 16 जनवरी 1840 ईस्वी को कर दी। थानचुंग के मतानुसार ब्रिटेन के विरुद्ध लिन का फौजी प्रयास अफीम के विरुद्ध युद्ध था। ब्रिटेन के द्वारा युद्ध की घोषणा चीनी लक्ष्य को पराजित करने के लिए की गई थी। इस कारण इसे अफीम विरोध के विरुद्ध युद्ध कहा जाना चाहिए, क्योंकि बीजगणित के सिद्धांत के अनुसार दोनों विरोधी शब्दों को काटा जा सकता है। इस कारण यह युद्ध अफीम युद्ध ही कहलाएगा। शिनफाओ छांग का कथन है कि युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटेन के द्वारा किया गया वाणिज्यिक विस्तार तथा चीनियों के द्वारा इसे नियंत्रण करने का प्रयत्न था। इस टकराव के कारण युद्ध हुआ। अफीम का व्यापार ब्रिटिश वाणिज्यिक विस्तार के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसकी जगह शीरा या चावल भी ले सकते थे। वस्तु चाहे कोई भी होती, चीनियों तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी था। अफीम की महत्ता के कारण इस युद्ध का नाम अफीम युद्ध पड़ गया। थानचुंग ने छांग के कथन की आलोचना करते हुए कहा है कि छांग ने अफीम व्यापार के संदर्भ में पारस्परिक संबंधों के बारे में ध्यान नहीं दिया है। शीरा अथवा चावल साधारण वस्तुएं थी, जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संदर्भ में अफीम कोई साधारण सी वस्तु नहीं थी। इस कारण थानचुंग के मतानुसार यह नहीं मानना चाहिए कि इस युद्ध का नाम वस्तु के अनुसार बदला भी जा सकता था। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई। अंग्रेजों की उच्च स्तरीय फौजी शक्ति के समक्ष चीनियों को अपने घुटने टेक देने पड़े। उनके ऊपर एक अपमानजनक संधि, नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी में थोप दी गई। चीनी साम्राज्य संधिगत बंदरगाह प्रणाली से बाध्य कर दिया गया। इस असमान संधि प्रणाली के अंतर्गत उसे 5 वर्षों में 5 विदेशी शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये देश थे इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, नॉर्वे तथा स्वीडन। चीन के ऊपर युद्ध के हर जाने के रूप में 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलर की भारी राशि थोप दी गई। व्यापार के लिए 5 बंदरगाह, कुआंगचोउ यानी कैंटन, शियामन यानी अमाय, फुचोउ, निंगपो तथा शंघाई खोल दिए गए। हांगकांग का बंदरगाह लीज पर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 1843 ईस्वी की बो की अतिरिक्त संधि के अनुसार समुद्र सीमा शुल्क 5% की दर से निर्धारित कर दिया गया। यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि अंग्रेजों ने अपने देश में कुछ वस्तुओं पर समुद्र सीमा शुल्क की दर 300 से 400% लगाई हुई थी, तो यह दर बहुत ही निम्न थी। देशोत्तर अधिकार के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के आधार पर अब अंग्रेज अपने देश की विधि संहिता के अनुसार न्याय प्राप्त कर सकते थे। सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज की शर्त के अंतर्गत अन्य राष्ट्रों को प्राप्त लाभ इंग्लैंड को भी मिल सकते थे। संधि की शर्तों में अफीम से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं था। सारांश में, अफीम युद्ध चीन तथा इंग्लैंड के बीच प्रथम व्यापक स्तर का फौजी संघर्ष था। दोनों राष्ट्रों के मध्य विभिन्न कारणों से तनाव और खींचातानी बने रहे। यद्यपि चीन और इंग्लैंड के बीच सांस्कृतिक तथा अन्य मतभेद मौजूद थे, तथापि इस युद्ध को पुराने व स्थिर संस्कृति के उधार के लिए प्रयास नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन द्वारा चीन के सांस्कृतिक उधार का बीड़ा सराहनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अफीम की तस्करी की समस्या से जुड़ा हुआ था। अफीम के व्यापार का प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि इस पर भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार आश्रित था। यह युद्ध चीन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रथम चरण था। इसका पूर्ण आर्थिक शोषण हुआ तथा देश का आर्थिक संतुलन भी बुरी तरह से बिगड़ गया। यह युद्ध उतना ही दुखपूर्ण तथा निर्णायक सिद्ध हुआ जैसा कि भारत के लिए प्लासी और बक्सर के युद्ध थे।